लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कस्तल संत आंजेलो पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। जयंती वर्ष में रोम के विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जानने के क्रम में आज हम कस्तल संत आंजेलो के बारे जानेंगे। धूप हो या बरसात हो या कड़ाके की ठंड हो, कस्तल संत आंजेलो एक ऐसा स्थल है जहां पर्यटकों की भीड़ हमेशा दिखाई देती है। तो आइए हम जानने का प्रयास करें कि कस्तल संत आंजेलो की क्या विशेषता है और कैथोलिक कलीसिया के साथ इसका क्या संबंध है। तो लीजिए प्रस्तुत है रोम स्थित कस्तल संत आंजेलो के ऐतिहासिक स्मारक पर एक लघु चर्चा, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। कस्तल संत आंजेलो इटली की राजधानी रोम में एक ऐतिहासिक किला और मकबरा है। इसे दूसरी शताब्दी में रोमन सम्राट हैड्रियन ने अपने और अपने परिवार के मकबरे के रूप में बनवाया था। बाद में इसे एक किला, फिर जेल और पोप के आश्रय स्थली के रूप में इस्तेमाल किया गया। टाइबर नदी के किनारे वैटिकन सिटी के नजदीक कस्तल संत आंजेलो आज एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसके छत से रोम का शानदार नजारा देखा जा सकता है। यह इटली के समृद्ध वास्तुकला एवं इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इतिहास लगभग 1900 साल पुराना है और यह रोमन साम्राज्य से लेकर मध्ययुगीन काल और पुनर्जागरण तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। सम्राट हैड्रियन ने इसे 135 ईस्वी में अपनी और अपने परिवार की समाधि के रूप में बनवाना शुरू किया था और इसे 139 ईस्वी में पूरा किया गया। यह विशाल गोलाकार मकबरा पत्थरों से बना है और इसके शीर्ष पर संत माइकल महादूत की एक कांस्य मूर्ति है, जहां सम्राट हैड्रियन के अलावा कई अन्य रोमन सम्राटों को भी दफनाया गया। तीसरी और चौथी शताब्दी में जब जर्मनिक जनजातियों और अन्य दुश्मनों के आक्रमण शुरू हुए, तो रोमन सम्राटों ने मकबरे को एक सैन्य किला बना दिया। सम्राट ऑरेलियन ने इसे रोम की रक्षा के लिए अपनी किलेबंदी में शामिल किया। 403 ईस्वी में सम्राट होनोरियस ने इसे पूरी तरह से सैन्य किला घोषित कर दिया। वहीं रोम के पतन के बाद कस्तल संत आंजेलो कई युद्धों और हमलों का केंद्र बन गया। 10वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान इससे रोम के शक्तिशाली परिवारों द्वारा किले और जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। कई संत पापाओं ने भी हमलों और संकट के समय यहीं शरण ली। इस तरह इसे संत पापाओं के महल में बदल दिया गया और इसमें सुंदर भित्ति चित्रों से सजे कई शानदार कमरे जोड़े गए। आधुनिक काल में इसे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण के बाद यह एक सैन्य बैरक एवं जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 1901 में इसे एक राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। आज यह संग्रहालय रोमन इतिहास, कला और मध्ययुगीन हथियारों का एक अद्भुत केंद्र है। कास्टेल सांतांजेलो में आकर्षण की मुख्य चीजें हैं वैटिकन से जुड़ी गुप्त सुरंग, शीर्ष पर स्थित स्वर्गदूत संत माइकल की प्रतिमा, पोप के शानदार कक्ष जो सुंदर भित्ति चित्रों से सजे हैं, तथा किला के ऊपर से रोम का शानदार नजारा। कास्टेल सांतांजेलो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि रोम के पूरे इतिहास का साक्षी है। आज यह रोम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां हजारों लोग इसकी समृद्ध विरासत को देखने आते हैं। कास्टेल सांतांजेलो की कातिक कलीसिया के साथ एक गहरा संबंध है। यद्यपि इसे मूल रूप से एक रोमन सम्राट के मकबरे के रूप में बनाया गया था, लेकिन मध्ययुगीन काल और पुनर्जागरण के दौरान यह संत पापाओं के लिए एक शरण स्थान बन गया। 590 ईस्वी में रोम में प्लेग महामारी फैली हुई थी। पोप ग्रेगोरी प्रथम ने इस महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की और एक धार्मिक जुलूस निकाला। किंवदंती के अनुसार जब यह जुलूस कास्टेल सांतांजेलो के पास से गुजरा तो पोप ने किले के ऊपर संत माइकल को अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए देखा। इससे प्लेग के अंत का दिव्य संकेत माना गया और इस घटना के सम्मान में इस किले का नाम कास्टेल सांतांजेलो रखा गया। बाद में संत माइकल की एक कांस्य प्रतिमा किले के शीर्ष पर स्थापित की गई जो आज भी मौजूद है। पोप निकोलस तृतीय ने पसेतो दी बोर्गो नामक एक गुप्त सुरंग बनवाई जो वैटिकन पैलेस से कास्टेल सांतांजेलो तक जाती है। यह सुरंग संकट के समय संत पापाओं को वैटिकन से भागने में मदद करती थी। 1527 में सम्राट चार्ल्स पांचवें की सेना ने रोम पर आक्रमण कर दिया। पोप क्लेमेंट सातवें ने कास्टेल सांतांजेलो में शरण ली और इस किले के मजबूत दीवारों के कारण जीवित बच गए। लगभग एक महीने तक उन्होंने वहीं रहकर हमलावरों से खुद को सुरक्षित रखा। बाद में कई संत पापाओं ने इसे भव्य महल में बदल दिया और इसमें खूबसूरत भित्ति चित्र और सजावटी कक्ष बनाए जिसमें पोप पॉल तृतीय ने इसमें शानदार अपार्टमेंट एवं चैपल जोड़े। कास्टेल सांतांजेलो को कातिक कलीसिया के विरोधियों और अपराधियों के लिए जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। कातिक कलीसिया के खिलाफ जाने वाले कई लोगों को यहाँ कैद किया जाता था जिनमें दार्शनिक वैज्ञानिक और धर्म विरोधी शामिल थे। आधुनिक युग में कास्टेल सांतांजेलो का कातिक कलीसिया के साथ संबंध देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण के बाद इस पर पोप का नियंत्रण समाप्त हो गया और यह इटली सरकार का हिस्सा बन गया। हालांकि इसे अब भी एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल माना जाता है और कलीसिया से इसका सांस्कृतिक संबंध बना हुआ है। आज पर्यटक इसे देखने आते हैं और इसकी छत से संत पेत्रुस महागिरजा घर का शानदार दृश्य देख सकते हैं। आज भी यह स्थान कार्तिक परंपराओं और रोम के धार्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत रोम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कास्टेल सांतांजेलो के बारे सुन रहे थे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
किसने बनाया चिड़ियों को किसने बनाया चिड़ियों को, वो ईश्वर है। किसने बनाया चिड़ियों को किसने बनाया चिड़ियों को, वो ईश्वर है। ईश्वर कितना अच्छा है, सबको जीवन देता है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम है। ईश्वर कितना अच्छा है, सबको जीवन देता है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम है।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका जंगल की मौत। लेखक हैं संदीप दुबे। श्रोताओं, मानव ने आधुनिकता और वैज्ञानिकता के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है। परिणाम स्वरूप हमारी धरती प्रदूषित हो गई है। आज पूरी की पूरी आबोहवा ही प्रदूषित हो गई है। न ही पीने के लिए साफ पानी है और न ही सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, केवल और केवल मनुष्य है। मनुष्य ने जंगलों के पेड़ों को काटकर अपने लिए ही समस्या उत्पन्न नहीं की है, अपितु अन्य पशु पक्षियों से भी उनका निवास छीन लिया है। तेजी से बदलते परिवेश में गांव अब नगरों का आकार ले रहे हैं और बड़े पहाड़ घाटियों में बदल रहे हैं। दुनिया भर के उद्योग भले ही संपन्नता और समृद्धि लाए हैं, लेकिन पारिस्थितिक संतुलन को लगातार बिगाड़ रहे हैं। औद्योगिक कचरे का अनुचित निपटान जल प्रदूषण का स्रोत बन गया है। विभिन्न उद्योग से निकलने वाले धुएं और रासायनिक कचरे नदियों, झीलों, समुद्रों में प्रदूषण फैला रहे हैं। हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सभी का जागरूक होना अति आवश्यक है। आज की नाटिका में प्रकृति का विलाप आपको भी भावुक बना देगा। आइए हम अपने स्तर से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु ठोस कदम लेने का निर्णय लें। तो लीजिए, प्रस्तुत है संदीप दुबे की लिखी नाटिका जंगल की मौत।
अरसे के बाद वो गांव लौटा था, लेकिन गांव में गांव जैसी कोई चीज बाकी ही नहीं थी। चौपाल का नामो निशान मिट चुका था। आसपास का घना जंगल पुरानी सभ्यताओं की तरह गायब था। उसके अपने गांव में वो अजनबी की भांति खड़ा था। उसे कोई पहचानने वाला नहीं था। वो निराश हो गया। इक्के दुक्के पेड़ पौधों, नदी और बची खुची पहाड़ियों में वो अपना बचपन तलाशने लगा। घूम फिरकर उसने अपने एक पुराने परिचित बूढ़े बरगद को ढूंढ निकाला।
बाबा, बरगद बाबा, मुझे पहचाना? मैं गुट्टू हूं। हाँ, वही गुट्टू, बचपन वाला गुट्टू। याद है बाबा, बचपन में तुम्हारी जटाओं में सर्कस के कलाकार की तरह झूला करता था मैं।
भूलना चेतन प्राणियों का गुण है। हम जड़ जीव कभी परिचितों को नहीं भूलते। तुम्हारी तरह सैकड़ों बच्चों ने मेरी छांव में लुका छिपी का खेल खेला है। मैं किसी को नहीं भूला।
बाबा, यहाँ सब कुछ बदल गया है। सारा जंगल साफ है। वह नारियल चाचा भी नहीं दिख रहे जो बच्चों को देखते ही अपने फल टपकाने लगते थे।
वही ना, जिन्हें तुम बच्चे नेहरू चाचा कहते और मुझे गांधी बाबा।
हाँ, याद आया, आप दोनों के बीच एक सागौन चाचा भी थे जिन्हें हमने सरदार पटेल का नाम दिया था।
हाँ, वो जिसको काटने की कोशिश में लकड़ी चोरों की कुल्हाड़ियां टूट जाया करती थी। सचमुच वह पेड़ लकड़ी नहीं, लोहा था।
हाँ बरगद बाबा, उस जमाने के पेड़ों की बात ही कुछ और थी। बाबा बड़े स्वाभिमान से आकाश में सिर उठाए खड़े रहते थे। पेड़ों की नई पीढ़ी में कहाँ है वह दमखम। थोड़े से बच्चे बस, वे भी खेतों से दूर कैसे सहमे से खड़े, जैसे कोई पत्थर उठाकर मारने वाला हो और वे भागने की तैयारी में हो, है ना बाबा।
हाँ बेटे, वे मनुष्य की बर्बरता के शिकार है। आदमी को देखते ही सहम जाते हैं, डरते हैं कि कहीं काट ना डाले जाए।
शुक्र है बाबा, पुरानी पीढ़ी की निशानी आप बाकी हैं।
हाँ, शायद धार्मिक भय से मुझे बख्श दिया गया है। शास्त्रों में मुझे पूजी जो बताया गया है।
लेकिन बाबा, एक साथ पूरा जंगल कैसे काट दिया?
बरसों पहले सरकार का इजाजतनामा लेकर कुल्हाड़ीधारी सिपाही दिल्ली से आया था। सैकड़ों सिपाही उसके साथ थे। उसने हाथ उठाकर कत्लेआम का हुक्म जारी कर दिया। एक एक करके सारे साथी कत्ल कर दिए गए। कोई
बाबा दुखी ना हो, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा बाबा। बरगद बाबा, अब मैं चलता हूं। यहां तो ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, वे कहां अदृश्य हो गए।
हम ही हैं वे पहाड़। आदमी ने ऑपरेशन कर हमारा रूप बदल दिया है। अब हम पहाड़ियां हैं।
क्या पहाड़ियां? मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं इसी गांव का हूं।
तुम भोले गुरुजी के लड़के हो ना, तो बाल बच्चेदार हो गए होंगे।
तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन उन दिनों तुम यहाँ नहीं हुआ करती थी।
उन दिनों मैं पहाड़ थी, मेरा कद आसमान छूता था। बादल मुझसे टकरा कर बरस पड़ते थे। पता नहीं कैसे आदमी को एक दिन मेरे भीतर छिपे लोहे का पता चल गया। बस बड़ी बड़ी मशीनों ने हमें काटना और लोहा निकालना शुरू कर दिया और हम सब पहाड़ी बना दिए गए।
तो इसे भी नहीं छोड़ा। क्या इंसान इतना निर्मम हो सकता है?
कैसे हो गुड्डू भैया?
कौन?
मैं भूत नहीं, खेत बोल रहा हूँ। मुझे भूल गए क्या?
तुम खेत, तुम मुझे कैसे जानते हो?
तुम 8-10 बरस के रहे होगे, तब मैं खेत नहीं चारागाह था। याद करो, तुम जब साइकिल सीखने आया करते थे, तुम्हें कई बार गिरते और रोते देखा है मैंने।
तुम चारागाह से खेत कैसे बन गए?
अब क्या बताएं बेटा, आदमी ने पहले जंगल को खदेड़ा, जैसे आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को खदेड़ा था। फिर हम चारागाहों की बारी आई, हमें खेत में बदल दिया गया। कुछ समय बाद मैं खेत भी नहीं रहूंगा, यहाँ मकान और दुकानें खड़ी हो जाएंगी।
नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। यह तो विनाश की ओर अग्रसर पथ है, यह हरगिज नहीं होने दूंगा। अरे, ये आवाज किसकी? और इस नदी को क्या हुआ? बीमार की तरह सुस्त सी लग रही है। कैसी हो नदी बहन? आज 20 साल बाद तुमसे मिलने आया हूँ। पहचान तो रही हो ना?
पहचानूंगी कैसे नहीं, तुम ही तो थे ना जो बड़े बड़े पत्थर रखकर मेरे प्रवाह को रोकना चाहते थे। कहते थे नदी मैया गांव के बाहर मत जाओ।
हाँ,
अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। अब मैं किसी के काम की नहीं रही। गत्ते के कारखाने ने मेरा पानी प्रदूषित कर दिया है। मेरी सारी की सारी मछलियां मर चुकी हैं।
ओ नई सभ्यता के शहंशाह, कि देखो तुम्हारी यंत्र सभ्यता ने सारे जंगलों को जख्मी कर दिया है। प्रकृति के सारे कपड़े नोच डाले हैं। तुम्हारे कल कारखाने जंगल के सौंदर्य पर तेजाब का काम कर रहे हैं। तुमने सारी स्वर्गिक जगहों को नरक में बदल दिया है। बंद करो, बंद करो। क्या तुम्हें जंगल की मौत पर मेरा शोक गीत सुनाई पड़ रहा है? क्या तुम मेरा क्रंदन सुन रहे हो? मैं उद्घोषक हूं नई बस्तियों का, नए मनुष्यों का। मैं कहता हूं अतीत राख की ढेरी है, बीता हुआ कल। सूर्य है जो पश्चिम में डूब गया, हवा है जो गुजर गई। आने वाले कल, उसके बाद के कल और उसके बाद के ढेर सारे कल, यही तो विश्व है। विश्व आने वाले दिनों का महासमुद्र है, महाकाश है आने वाले दिनों का। मैं सहोदर हूं धान उगाते उस किसान का, जो पश्चिम में डूबते सूरज को देखकर आशा भरे स्वर में कहता है, आने वाला कल मेरा है, मेरा है।
जंगल की मौत। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संदीप दुबे, विजय पंडित और अंतरा करवड़े। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।